अमल का कारवां यसो है पाक वतन के पास यसो।
सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आईएसओ ब्रादरान का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आपसे हायर एजुकेशन के हवाले से कुछ गुफ्तगु कर सकें। और मुझे असली तौर पे कल आना था, मेरे बड़े भाई बीमार हैं, आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाए, उसकी वजह से मुझे ये आज रीस्केड्यूल करना पड़ा। मैं अपना तारफ़ थोड़ा सा करवा दूं कि मैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन एक इदारा है इस्लामाबाद में, उसमें जॉब करता हूं। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन जो है ये एक फंडिंग एजेंसी है, आपने हायर एजुकेशन कमीशन का नाम सुना होगा, ये बिल्कुल उसी तरह से हायर एजुकेशन कमीशन से भी पुरानी पाकिस्तान की पहली फंडिंग एजेंसी है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए प्रोजेक्ट्स फंड करती है। और हायर एजुकेशन कमीशन सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करता है, जबकि साइंस फाउंडेशन एजुकेशन के फील्ड में यानी यूनिवर्सिटीज़ को भी फंडिंग करता है। और इसके अलावा जो रिसर्च के इदारे हैं जैसे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, पाकिस्तान ये जो PCSIR है, इसके अलावा जैसे यहाँ पर इस फैसलाबाद में निब जी है, किब जी है, मुख्तलिफ जो मुल्क के इदारे हैं पूरे पाकिस्तान में ये फंडिंग करती है। तो इसकी बैकग्राउंड मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पे आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन हायर एजुकेशन, मुझे ये हुक्म दिया गया कि आपने हायर एजुकेशन पे गुफ्तगु करनी है, लेकिन हायर एजुकेशन का एक डायमेंशन जो है वो मैं डिस्कस करूँगा कि जब आप हायर एजुकेशन में एंटर होते हैं तो आप किस तरह से उस हायर एजुकेशन में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके हवाले से आप एक्सेल कर सकते हैं। और मैं अपनी जो गुफ्तगु है उसका इफ्तिताह या आगाज़ दो क्वेश्चन से करना चाहता हूँ। और पहला सवाल ये है कि जब भी कोई तरबियती कोर्स होता है, कोई ट्रेनिंग होती है, कोई वर्कशॉप होती है, किसी किस्म का भी कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल आपके लिए बनाया जाता है, तो उसका बुनियादी मकसद क्या है? एनीवन, कोई भी दोस्त, कोई भी ब्रादर, कि जो भी आपके लिए तरबियती कोर्स डिज़ाइन किया जाता है उसका क्या मकसद है? आपके अंदर स्किल्स आ जाए। मैं ये चाहूँगा कि आप खुद भी बात करें, क्योंकि ये जो इंटरेक्टिव सेशन है इस तरबियती कोर्स में ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो सलाहियतें हैं उनको भी थोड़ा वक्त मिले। तो इन्होंने कहा कि ताकि आपके जो स्किल्स हैं वो परवान चढ़े। कोई और? जी, दोबारा। इन्होंने कहा कि ताकि हम फील्ड के अंदर सही परफॉर्म कर सकें। जी, ताकि इसकी इम्प्लीमेंट माशरे में करवा सकें। बिल्कुल ठीक, हमारे मालूमात में इजाफा हो जाए। जी, असर हाजिर से आशना रहे। तो ये जी पोटेंशियल एनर्जी को उजागर करना, ये सारे जवाब जो है वो बिल्कुल सही हैं। और मैं इन्होंने जो कमेंट किया है इस पे थोड़ी सी आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। ये 1950s की बात है, थाईलैंड के अंदर एक टेंपल था, टेंपल जिस तरह हमारी इबादतगाह है। चूँकि वक्त एक ही घंटे का दिया गया और ये सेशन भी ऐसा नहीं है कि मैं आपके अंदर मूव करके आपसे इंटरेक्ट कर सकूँ, तो इसलिए मैं बातों को जो है वो समराइज़ करूँगा। और मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं है कि आप में साइंस की बैकग्राउंड के कितने लोग हैं। अगर मुझे अगर थोड़ा सा आइडिया हो साइंस की बैकग्राउंड के कितने लोग हैं, ज़्यादातर साइंस की बैकग्राउंड के हैं, और आर्ट्स की बैकग्राउंड के कम लोग हैं। चलें, खैर बात में फिर काफ़ी आसानी है मुझे करने के लिए। तो टेंपल जो है, मैं ये बात कर रहा था कि थाईलैंड का एक टेंपल था जो आपने बात की है, उसके अंदर गौतम बुद्ध का एक मुजस्मा था। गौतम बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, ये जो बुद्ध मज़हब है उसके बानी, उनका असल नाम सिद्धार्था था, तो गौतम बुद्ध उनको कहते थे। उनका एक बहुत बड़ा मिट्टी का बना हुआ एक देवकामत मुजस्मा था, और वहाँ पर जंग लगी हुई थी, और जंगी हालात में उन्होंने कहा कि इसको कोई नुकसान न पहुँचाए, तो उन्होंने, वो इतना बड़ा था कि उसको आम आदमी उठा नहीं सकता था, तो उस मुजस्मे को उन्होंने क्रेन से उठा के किसी और जगह पे शिफ्ट करना था। तो वो रात बारिश भी हो रही थी और सूरत हाल इस तरह की हुई कि वो क्रेन से शिफ्ट करने के लिए जब वो कोशिश कर रहे थे तो बारिश की वजह से वो कर नहीं सके। लेकिन उस उठाने के लम्हे में जो मुख्तलिफ लोग उसको उठा रहे थे, एक शख्स को हल्का सा ये महसूस हुआ कि इस मिट्टी के मुजस्मे से कहीं से हल्की सी कोई चमक, एक स्पार्क सा जैसे उसे नज़र आया कि कोई चमकती हुई चीज़ है। तो बड़ा हैरान हुआ कि ये मिट्टी के अंदर से ये चमक कैसे आ सकती है। तो जब सब लोग चले गए तो बाज लोगों में तजस्स ज़्यादा होता है, तो उसने छोटा सा औजार लिया, थोड़ा कह लें या कोई चीज़। जब सब लोग चले गए तो उसको जहाँ शक हुआ था कि ये यहाँ से रोशनी सी नज़र आई थी, उसने उसको थोड़ा थोड़ा कुरेदना शुरू किया, और करते करते जब वो मुजस्मे के थोड़ा सा अंदर दाखिल हुआ, उसको उसकी एक्सपोज हुआ, तो उसको पता चला कि ये जो मुजस्मा मिट्टी का बना हुआ है, ये अंदर सारे का सारा सोने का बना हुआ है। और उसकी तारीखी बैकग्राउंड ये थी कि बेसिकली चूँकि वो बाद में वो एक्सपोज हुआ कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सोने से बना हुआ मुजस्मा था, तो चूँकि जंग के अंदर लूटमार थी और वो उनका मजहबी पेशवा भी था, तो उन्होंने उसको छुपाने के लिए, जिस तरह स्काउट्स या कैमोफ्लेज वगैरह की ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके ऊपर इंतहाई आर्टिस्टिक अंदाज में बहुत ही खूबसूरत एक मिट्टी का उसके ऊपर मुजस्मा बना दिया, और सोने का मुजस्मा उसके अंदर कवर्ड हो गया। ये जो बात मैंने आपको सुनाई है, ये एक किताब जो कि स्टूडेंट्स को या आम आदमी को मोटिवेट करने के लिए है, उसके दिबाचे से मैंने पढ़ी, और उन्होंने कंक्लूड ये किया कि हम सब लोग, हम जिस तरह हमारा मज़हब भी कहता है कि हमारे अंदर एक ये जिस्म की, हमारे दो हैं, एक जिस्म जो हमारा मटेरियल बॉडी है और एक इसके अंदर चीज़ है। तो मैंने ये चीज़ आपको इसलिए सुनाई है कि इन्होंने बड़ा अच्छा एक कमेंट किया कि जो भी ट्रेनिंग होती है, जो भी कोई तरबियती प्रोग्राम होता है, या जो भी कोई आप स्किल डेवलपमेंट की वर्कशॉप करवाते हैं, तो बुनियादी तौर पे हर इंसान की ख्वाहिश ये होती है कि उसके नतीजे में उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो सामने आए। और मैं इस चीज़ को बड़ा एम्फेसाइज करता हूँ कि आपके अंदर जिस तरह वो मिट्टी के मुजस्मे के अंदर एक सोने का मुजस्मा मौजूद है, लेकिन किसी आदमी को खबर नहीं जब तक वो तजस्स करके उसकी गहराई में नहीं झांकता। इसी तरह आप सब लोग जो मौजूद हैं, आपके अंदर भी एक सोने का मुजस्मा, एक हायर पर्सनैलिटी, एक चमकदार पर्सनैलिटी मौजूद है, और उसकी अहमियत ये है, आप तो माशाल्लाह खैर बड़े हैं, लेकिन अभी भी आपकी उम्र ये है कि आपसे ये बात की जाए कि बच्चे की जो मिसाल है वो बीज की तरह दी जाती है, कि बीज जो है, आप देखें बरगद का दरख्त जो है कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज बहुत छोटा होता है। उस बीज के अंदर साइंटिफिकली वो तमाम पोटेंशल्स होते हैं कि वो एक बहुत बड़ा दरख्त जो है वो बन सके, प्रोवाइडेड आप उसको तमाम एनवायरनमेंट, सूटेबल एनवायरनमेंट आप उसे प्रोवाइड करें, उसे पानी दें, उसे रोशनी दें, उसे हवा दें, सारी चीज़ें दें। तो आप जिस स्टेज पे हैं और आपसे छोटी स्टेज पे जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी मिसाल भी ऐसे ही कि आपके अंदर वो तमाम पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन असल चीज़ यह है कि आप अपने आप को कितना सर्व करते हैं। मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बहु, आप अपने आप को कितना एक्सप्लोर करते हैं, इस पे भी मैं एक चीज़ जो है वो डिस्कस करूँगा। یہ چند تمہیدی چیزیں میں ضروری سمجھتا ہوں آپ سے کرنا ہوں. یہ جو ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ انتہائی وسیع جامع اور گہری ایک حقیقت ہے. اس کے صرف ایک ڈائمینشن پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اس ہال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان اس وقت لگ بھگ جو 7 ارب لوگ ہیں کوئی کسی سے ملتا نہیں ہے. ہر شخص جو ہے وہ دوسرے سے شکل میں مختلف ہے اگرچہ اس کے بنیادی فیچرز ایک ہی ہیں. یہ چہرے کے اوپر تمام جو آرگنز ہیں وہ ایک ہی ہیں لیکن ہر شخص دوسرے سے مختلف ہے. ہمارا تھمب امپریشن ہر شخص کا دوسرے سے مختلف ہے. تو کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو دوسروں سے مختلف ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ نہ ہو. وہ چیز آپ کے اندر موجود ہے لیکن آپ نے اس پہ کتنی گہری نظر ڈالی ہے اور اس کو اجاگر کرنے کے لیے کتنی کوشش کی ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس موضوع کے اوپر ماڈرن مینجمنٹ میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اور اس کو کہتے ہیں, میں جس چیز پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں, انگلش کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کور کمپیٹنسیز, CORE, کور یعنی جو کسی چیز کے اندر ہوتی ہے. جیسے کور آف دی ارتھ ہے, زمین کا جو مرکز ہے اس کو کور کہیں گے. انہوں نے جو پوٹینشیل کا لفظ استعمال کیا, کمپیٹنسی صلاحیت, اسی معنوں میں. سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم ہائر ایجوکیشن پہ بات کریں, وہ ہے کور کمپیٹنسی. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس بات پہ ورک آؤٹ کیا ہے کہ آپ کی کور کمپیٹنسی کیا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور آپ اس طرح کی صلاحیتوں کو یوٹیلائز کرنے کے لیے کیا پلان آف ایکشن رکھتے ہیں؟ کوئی اینی باڈی ہو کین کمنٹ جو کہتا ہو کہ میں نے اپنی کور کمپیٹنسی جو ہے اس کو پہچانا ہے؟ جی برادر, کوئی کمنٹ کرے گا؟ دیکھیں اس کی مثال یہ ہے, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو پریکٹیکل مسائل زندگی میں ہم نے دیکھے, جو مشاہدہ کیے, ہمارے ملک کے جہاں بے شمار مسائل ہیں وہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو ایجوکیشنل کیریئر کاؤنسلنگ ہے وہ نہیں ہے اور وہ مناسب عمر میں نہیں ہوتی, اور بہت سے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں یہ ہوتا ہے. مثال اس کی یہ ہے کہ میرا پوٹینشیل یا میری صلاحیت جو ہے وہ ادیب بننے کی ہے اور مجھے ماں باپ نے کہا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. تو یہ چیز کیسے پتہ چلے گی کہ آپ کے اندر کور کمپیٹنسی کہاں کیسی ہے؟ اس کی بہت سی اسٹڈیز ہیں, اس کی مینجمنٹ ہے, لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, جس چیز کا آپ کے اندر فطری ذوق شوق ہو یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے, یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس طرح کی صلاحیتیں قدرت نے آپ کے اندر ایز اے کور کمپیٹنسی رکھی. دیکھیں کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کرتے ہیں تو تھکتے نہیں, اور کچھ کام آپ ایسے ہیں جو کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں. جن لوگوں کو مطالعہ کا وسیع شوق ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ وہ ساری رات جاگ کے پڑھتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں وہ تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے, اور بعض لوگ جو ہے وہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں. تو اگر کوئی شخص کسی کام کو کر رہا ہے اور اس کے اندر بے پناہ جذبہ ہے اس کام کو کرنے کا, شوق ہے, ولولہ ہے, اور وہ اس کام کو کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے, تو یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ وہ اس طرح کی کور کمپیٹنسی اس کے اندر موجود ہے. تو ایک تو میری یہ بات ہے کہ آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہو, آپ کا ادھر یو آر اے ڈاکٹر, انجینئر, اکانومسٹ, سائنٹسٹ, واٹ ایور, آپ اپنی کور کمپیٹنسی جو ہے اس کو ضرور پہچاننے کی کوشش کریں. اب دوسرا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو یونیورسٹی ایجوکیشن میں ہیں؟ ماشاءاللہ زیادہ تر موسٹلی یونیورسٹی ایجوکیشن سے. کالج ایجوکیشن میں اور یونیورسٹی ایجوکیشن میں کیا فرق ہے؟ آپ کالج میں بھی کتابیں پڑھتے ہیں, यूनिवर्सिटी में भी किताबें पढ़ते हैं, कॉलेज में भी आके प्रोफेसर लेक्चर देता है, यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर देता है, कॉलेज में भी इम्तहान होता है, यूनिवर्सिटी में भी इम्तहान होता है। तो जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो कॉलेज की तालीम यूनिवर्सिटी की तालीम से कैसे मुख्तलिफ है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहूँगा कि दो चार दोस्त इस पर कॉमेंट करें। जी
कॉलेज में टीचर स्टूडेंट्स
जी, इन्होंने कहा कि कॉलेज के अंदर टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सेंटर्ड। जी और ये तो बहुत ही अहम है, इसलिए कि आप सब यूनिवर्सिटीज़ में हैं और आप कॉलेज से होके आए हैं, तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। जी कॉलेज में किताबें पढ़ाई जाती हैं और यूनिवर्सिटी में आइडिया जनरेट किया जाता है। एनी अदर? जी कॉलेज में वन वे, भाई आखिर बार जो कुर्सियाँ उनसे भी कुछ जवाब आना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक, कॉलेज में ज़बरदस्ती करते हैं, यूनिवर्सिटी में ज़बरदस्ती नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। एनी अदर? जी ये इन्होंने कहा कि जी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो रिसर्च और इनोवेशन इस तरह की चीज़ों को लेते हैं। जी स्टूडेंट की स्टूडेंट के टैलेंट को एक्सपोज किया जाता है, ये काफ़ी सारे जवाब जो है वो दुरुस्त हैं। और इन्होंने कहा कि आइडिया जनरेट होता है, वो भी बिल्कुल सही है। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना वो ज़बरदस्ती नहीं है जैसे कॉलेज में ज़बरदस्ती है। उसकी वजह ये है कि मैं एक पॉइंट आपको एक्चुअली क्लैरिफाई करना चाहता हूँ ताकि आप यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म के तौर पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील कर सकें। कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का जो बुनियादी फ़र्क है, बहुत से फ़र्क हैं जैसे आप सब ने कहा, सब जो आप सही हैं। कॉलेज के अंदर आपको जो इल्म पढ़ाया जाता है वो है जो दूसरों ने क्रिएट किया है, दूसरों ने किताबें लिखी हैं और आप उन किताबों को पढ़ रहे हैं, दूसरों ने किताबें लिखी हैं और असातिज़ा आपको पढ़ा रहे हैं। कॉलेज के अंदर नॉलेज जनरेट नहीं किया जाता, नॉलेज पैदा नहीं किया जाता, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ वो है और यूनिवर्सिटीज़ आर द इंस्टीट्यूट्स जहां पर नॉलेज क्रिएट किया जाता है, आइडिया क्रिएट किया जाता है, इनोवेशन क्रिएट किया जाता है। ये सब जवाब सही हैं। और कॉलेज में इसीलिए इस तरह से क्रिएशन ऑफ नॉलेज नहीं है कि वहाँ ज़बरदस्ती है। और जब आपकी फ्री विल होती है और आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो फिर आप नॉलेज जनरेट करते हैं। अब अलमिया ये है कि आप क्या समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कितना नॉलेज जनरेट कर रही हैं? पहली बात तो ये है कि हम ज़ाहिर है पाकिस्तान के जो बेशुमार मसाइल हैं उस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन जब तक हम इल्म को यूनिवर्सिटियों के अंदर जनरेट नहीं करेंगे, नया इल्म नए उलूम जो है वो पैदा नहीं करेंगे, तब तक यूनिवर्सिटियों का मकसद पूरा नहीं होगा। और आप भी ये बात जहन में रखें कि अगर आप यूनिवर्सिटी में जाके आपका थाट प्रोसेस इवॉल्व नहीं करता, आपके अंदर चीज़ों को सोचने समझने की, एनालाइज करने की और उस एनालिसिस के नतीजे में न्यू आइडियाज़ जनरेट करने की, नए ख्यालात पैदा करने की सलाहियत पैदा नहीं होती, तो इसका मतलब है कि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो तालीम है वो कॉलेज की तरह हासिल की है। आपने किताबें पढ़ी हैं, नोट्स पढ़े हैं, रट्टा लगाया है, नंबर लिए हैं, और यूनिवर्सिटी का ट्रांसक्रिप्ट हासिल किया है और आपने डिग्री ले ली, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में जाने का मकसद था कि आपका ये जो ब्रेन है जो अल्लाह ताला का सबसे बड़ा तोहफा है, देखिए इंसान की जितनी सलाहियतें हैं वो सारी इस हिस्से में मरकूज हैं। इसके अंदर ब्रेन है, आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ज़ुबान से बात करते हैं। यही वजह है कि जब हम सजदे में जाते हैं तो इसका शुक्र भी अदा करते हैं। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो जो मैं एक चीज़ यहाँ ये ज़िमनी तौर पे आ जाए कि आपकी जो नमाज की क्वालिटी है, मेरी जो डिक्शन है वो मजहबी डिक्शन से ज़रा हटके होगी। डिक्शन समझते हैं, डिक्शन से ये डिक्शनरी जो होती है यानी जो अल्फाज का इंतखाब है या जो ये जो वोकेबलरी है ये एक्सक्लूसिवली मजहबी डिक्शन से हट के होगी। लेकिन मैं चूंकि आप उम्र के इस हिस्से में हैं, यूनिवर्सिटियों के तालिब इलम हैं, तो आप ये देखें कि आपकी जो नमाज की क्वालिटी है और जिसने साइंस नहीं पढ़ी उसकी नमाज की क्वालिटी अगर आप उससे मुख्तलफ नहीं हैं तो इसका मतलब है आपने साइंस से कोई मार्फत हासिल नहीं की। जिस शख्स को ये एहसास है कि ये कायनात कितनी वसी है और इसका बनाने वाला कितना साहिब कुदरत है और उसकी अपनी ज़ात, आप में मेडिकल के स्टूडेंट्स भी हैं, अंदाजन कितने स्टूडेंट्स होंगे मेडिकल के, चंद स्टूडेंट्स मेडिकल के भी हैं, इसके अलावा भी साइंस स्टूडेंट्स को ये सोचना चाहिए कि हम इंसान जो है इसको आप वेब का ये ज़माना है स्टडी करें कि कितना ज़्यादा जो है इंसान कॉम्प्लेक्स है। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारा ब्रेन है और ये जो थॉट प्रोसेस का मरकज़ है, जो नए इल्म को क्रिएट करने का मरकज़ है, जब हम सजदा करते हैं तो इन सारी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और उसी मार्फत उसी वीएन के साथ फिर आप नमाज़ पढ़ते हैं। एनीवे, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, अब हम अगली बात यह करेंगे कि उस थॉट प्रोसेस का आपको फ़ायदा क्या होना है। आप बोर तो नहीं हो रहे? इसलिए कि जब आप बोर हों तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो यूनी डायरेक्शनल एक लेक्चर टाइप है, मेरी कोशिश ये होती है कि जब किसी से ग्रुप से महवे गुफ्तगू हूँ तो उनके साथ जाके करीब करके और इंटरेक्ट करके फिर बात करूँ। तो ये थोड़ा सा मुझे एहसास होता है कि शायद कोई चीज़ जो मुसलत होने वाली, यानी कॉलेज स्टाइल का लेक्चर नहीं होना चाहिए, यह यूनिवर्सिटी स्टाइल का लेक्चर होना चाहिए। तो थॉट प्रोसेस आपका जो है, अगर यूनिवर्सिटी में आप उसको क्रिएट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका फ़ायदा क्या है और आपको हायर एजुकेशन की तरफ क्या मोटिवेशन जो है वो मिलती है, इस पर हम बात करते हैं। आप में से कोई एक स्टूडेंट मुझे बताए कि वो क्या सोच के यूनिवर्सिटी में आया है? बेटे आप बताएं। द पेन इन योर माउथ, यस। किस यूनिवर्सिटी में आप जी? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। क्या कर रहे हैं? फार्मेसी कर रहे हैं। क्या सोच के यूनिवर्सिटी में आए? मेडिसिन के बारे में नॉलेज गेन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और कोई आइडिया कि यूनिवर्सिटी में किस लिए आए? जी, ये मैं चंद स्किल्स का जो है ना जी वो ज़िक्र करूँगा आपसे। हायर एजुकेशन के अलावा भी मैंने कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं, लिखे हैं, जो मैं चाहता हूँ कि आपसे शेयर करूँ। मुझे ये मैं चीज़ें एंड पे आपसे शेयर करूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं यही बता दूँ क्योंकि लेक्चर अभी आधे पौने घंटे का बाकी है। आपने ये कॉल सुना है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ? किसका कॉल है जी? मौला अली अलैहिस्सलाम का, बोलो ताकि पहचाने जाओ। तो जब आप अपने अंदर नज़र करते हैं तो आप अपने आप को पहचानते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आप अपनी पहचान करवाते हैं। इसी तरह से आपका कॉल है कि इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा हुआ है। जब भी कोई शख्स अपनी ज़ुबान को हरकत देता है तो उसके अंदर जो भी इंसान है वो दूसरे के सामने आ जाता है। ये मैंने इस अपनी डिस्कशन के आखिर में चंद चीज़ें आपको सजेस्ट करनी हैं, उनमें से सबसे पहली चीज़ खुदा के वास्ते, आज कोई और चीज़ मुझसे लर्न करें या ना करें, एक चीज़ ज़रूर आप मेरे कहने पे ज़िंदगी में करेंगे और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बोथ रिटन एंड ओरल, यानी आप में बोलने की सलाहियत और लिखने की सलाहियत, ये सबसे बुनियादी चीज़ है। ये आपके अंदर जो है ये आनी चाहिए और इस पे हम तफसीली जो है ना वो बाद में बात करेंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप कोशिश किया करें कि इन्हीं ट्रेनिंग सेशंस के अंदर आपका जो बोलने का पोटेंशियल है उसको भी एक्सरसाइज किया करें। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, यूनिवर्सिटी में आप क्या मकसद लेके आते हैं? देखिए, यूनिवर्सिटी में आने के बेशुमार मकासद हैं और जैसे आप इल्म हासिल करेंगे, आप बेशुमार चीज़ें करेंगे, लेकिन बुनियादी मकसद अगर आप बिल्कुल हकीकत पसंद हो तो क्या है जी? नौकरी, बिल्कुल ठीक। यानी जॉब एक मकसद है जी, इसी पे हम बात करते हैं और मैं इसी पे बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, ये इल्म हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में जाएं, आप किसी भी इदारे में जा सकते हैं, किसी भी जगह पे जा सकते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में नहीं गए लेकिन यूनिवर्सिटी वालों को पढ़ाते हैं। आपने नज़ीर नाजी का नाम सुना होगा, वो बेशुमार वज़राए आज़म की तकारीर लिखते रहे हैं और अब भी बहुत अच्छा लिखते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है उनकी जी? मैट्रिक हैं, वो मैट्रिक हैं, नज़ीर नाजी सिंपल मैट्रिक हैं, लेकिन आप देखें कि वो उनकी जो क्वालिटी, क्यों उन्होंने मेहनत ये की है। बहरहाल इस चीज़ पे, इस पहलू पे नहीं जाते। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप हायर एजुकेशन में आए हैं तो 95% जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी और 95% जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका भी जो एम्फेसिस है, जो पर्पस है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। आई मीन कि आप यूनिवर्सिटी से जो एजुकेशन हासिल करें उस एजुकेशन के नतीजे में जहां बहुत से आप मकासद हासिल करना चाहते हैं, एक बुनियादी मकसद जो है वो ज़रिया मुआश भी है। क्यों नहीं, ये हकीकत है या नहीं है? ये हकीकत है कि हम एक मास्टर्स डिग्री लेके या MBBS करके, FCPS करके, इंजीनियरिंग करके, ये सारी चीज़ों में जहां हम और बहुत सी चीज़ें लर्न करते हैं, बुनियादी मकसद जो है वो ज़रिया मुआश भी है और ये बहुत अहम भी है। अब असल चीज़ ये है कि आप हायर एजुकेशन जो है इसके अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है, इस पोटेंशियल को आप कैसे हार्नेस करेंगे, इस पोटेंशियल से आप कैसे फ़ायदा उठाएंगे, ये चीज़ बड़ी अहम है। देखिए, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, अब हम डायरेक्ट हायर एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस पे बात करना चाहता हूँ मैं, कि आप जो इतनी मेहनत के बाद, तगोदा के बाद, आपके पेरेंट्स ने इतना पैसा लगाया और इतनी जहमतों के बाद आप यूनिवर्सिटी में आए हैं और आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की तालीम के बाद आपको माशी आसानी हासिल हो, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आप गेन कर सकें, और ये कितनी ज़रूरी है ये इस बात का भी आपको अंदाज़ा है कि माशी तौर पे आज़ाद होना, माशी तौर पे इंडिपेंडेंट होना एक इंडिविजुअल का, एक माशरे का, एक मुल्क का कितना ज़रूरी है। दो चीज़ें, एक तो यह है कि वो कौमें जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं रखती वो हकीकत में पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस भी नहीं रखती। देखिए, अगर मैं हर वक्त आपसे मांग के खाता हूँ तो आप क्या समझते हैं कि मैं आपके सामने हक बात कहने की पोजीशन में हूँ? बहुत मुश्किल है। पहली बात तो ये रियलाइज़ करने की है कि आप जो यूनिवर्सिटियों में आए हैं आपका एक एक लम्हा कीमती है और आपने इसमें जहाँ बेशुमार स्किल्स हासिल करने हैं, उसमें टारगेट आपने, मैं अब जो चीज़ आपको इतनी लंबी तमहीद के बाद करना चाहता हूँ वो ये है कि आपके ऊपर जो इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है आपकी फैमिली की, आपके पेरेंट्स की और आपकी कौम की और आपके आपके मुल्क की, अब आपने उस तालीम से किस तरह से इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक गेन इस हायर एजुकेशन से हासिल करना है। देखिए आज के ज़माने में लीडर भी जो है ना, वर्ल्ड का ट्रेंड देखें कि जो आदमी मुल्क के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करता है उसी को लीडर कहा जाता है, उसी को लीडर माना जाता है। आप देखें ना अगले 5 साल के लिए एक आदमी जो है वो कहे जी मैं मुल्क की अखलाकियात सीधी कर दूंगा, दूसरा कहे जी मैं मुल्क की गुर्बत दूर कर दूंगा और इतनी डेवलपमेंट कर दूंगा। तो वो जो कह रहा है कि मैं अखलाकियात ठीक कर दूंगा वो एक ऐसी बात कर रहा है जो अचीवेबल है या नहीं है ये डिबेटेबल है, लेकिन जो कह रहा है कि मैं 5 साल में ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके मुल्क को मुआशी आज़ादी दे दूंगा, पूरी दुनिया का ट्रेंड ये है कि लोग अब लीडर्स भी इसी बात पे सिलेक्ट करते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जिस भी डिग्री पे हैं क्या आपने इस पे वर्कआउट किया है कि आपने उस डिग्री के ज़रिए से जो आपकी मुआशी इंडिपेंडेंस है, जो मुआशी आज़ादी है उसको कैसे हासिल करना है। देखिए मसाइल पाकिस्तान के बहुत हैं, मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा मसला क्या है आपके ख्याल में? इकोनॉमिक्स जी, एनर्जी क्राइसिस। भाई एक एक करके, एक एक करके जी, ताकि मुझे समझ भी आए। टेररिज्म, करप्शन, इलिटरेसी जी, अनएम्प्लॉयमेंट। अभी मैं एक जवाब सुनना चाहता हूँ, वो अभी सामने नहीं आया। आप खड़े हो जाएं, खड़े होकर बात करें। हिपोक्रेसी, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किसने कहा? खड़े हो जाएं। आपने कहा लीडरशिप, आपने कहा पॉपुलेशन, ठीक है बैठ जाए। मैं इसमें बात करना चाह रहा था जी, आप बात कीजिए, चूंकि आपका सवाल, आप भी बात कीजिए, आप क्या कह रहे हैं? डिग्रीज विदाउट एजुकेशन, ठीक जी, इल्म, ये सारे मसाइल हैं। इसमें ये है कि हर हवाले से डिस्कशन हो सकती है, लेकिन बीइंग ए साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट भी अगर आप में कोई इकोलॉजिस्ट हो जो पॉपुलेशन डायनामिक्स को जानता है कि जो पॉपुलेशन है उसकी साइंस क्या है, तो वो इस बात से एग्री करेगा कि ये एक नेचर का क्वेश्चन है, ये एक साइंस का क्वेश्चन है कि जो ओवर पॉपुलेशन होती है उसका पॉपुलेशन के ऊपर या लोगों के ऊपर या आबादी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, और जो ओवर पॉपुलेशन है, अब ये इसको आप एक साइंसी अंदाज में समझ देखिएगा, क्योंकि हर गुफ्तगू के मुख्तलिफ डायमेंशंस होते हैं, तो मैं जस्ट इसकी साइंटिफिक डायमेंशन आपसे बताता हूँ कि जो ओवर पॉपुलेशन है ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान की आबादी कितने मिलियन थी? अबाउट 23 मिलियन, 2.5 करोड़ के करीब, 2.3। और इस वक्त पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 180 मिलियन, 18 करोड़ के करीब। तो आप ये देखें कि कितना बड़ा चैलेंज है ये जो पॉपुलेशन है, ये कितना बड़ा चैलेंज है कि 18 करोड़ आदमियों को आपने, ये जितने मसाइल हैं, कनाडा जो है वो पाकिस्तान से कोई 20 गुना बड़ा है रकबे के लिहाज से, और कनाडा की दुनिया में वर्थ लिविंग कंट्री है, पहले 5 या 6 टॉप कंट्रीज जो है वर्थ लिविंग है उनमें से कनाडा है, कोई 20 गुना बड़ा है, कुदरती वसाइल हैं, अमेरिका कनाडा के पास 80% दुनिया का फ्रेश वाटर जो है वो सिर्फ अमेरिका और कनाडा के पास है, अगर पूरी दुनिया से पानी पीने का ख़त्म हो जाए अमेरिका कनाडा के पास फिर भी रहेगा। उनकी आबादी कितनी है, कनाडा की आबादी किसी को अंदाज़ा जी? 17 लाख 17 लाख। उनकी आबादी तकरीबन कोई 3.5 करोड़ के करीब है कनाडा की इस वक्त। तो आप ये देखें कि 18 करोड़ को फीड करना कितना बड़ा चैलेंज है, और चैलेंज क्या है कि आपने पानी भी देना है पीने के लिए, साफ पानी भी देना है, बीमारियों पे भी कंट्रोल करना है, स्कूल एजुकेशन भी देनी है, हायर एजुकेशन भी देनी है, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जहाँ चैलेंज होता है, ये बात भी आप जहन में रखें कि जहाँ चैलेंज होता है वहाँ अपॉर्चुनिटी भी होती है। जहाँ आपको मुश्किल दरपेश होती है और आदमी की जो जो जरूरतमंदी है वो यही है कि वो चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करे। आपको जो भी मुश्किल दरपेश है आप उसको एक अपॉर्चुनिटी बना लें और अपॉर्चुनिटी के बनाने के बाद उसको हार्वेस्ट करें। अब आप ये देखें कि चाइना की आबादी जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। चाइना जो है उसमें हालात काफ़ी बेहतर हैं। वजह यह है कि उन्होंने अपनी आबादी जो है उसी को एक अपॉर्चुनिटी बना लिया। अब हमारे यहाँ आप देखें 18 करोड़ आबादी है, अगर ये चंद मसाइल जो आपने जिक्र किए हैं ये हल हो जाते हैं, आप ये देखें कि इस वक्त लोग कह रहे हैं कि जो इमर्जिंग वर्ल्ड है वो एशिया है, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो मेन क्लस्टर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वो ईस्ट के अंदर है। तो पाकिस्तान में भी जहाँ ओवर पॉपुलेशन बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा चैलेंज है, वहीं पर ये जो पॉपुलेशन है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। और पाकिस्तान में इस वक्त 180 मिलियन, मैंने आपको बताया कि 180 मिलियन जो पॉपुलेशन है उसमें कोई 90 मिलियन जो है ना वो बिलो 20 है, यानी वो लोग जिन्होंने अभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाना है, और 40 मिलियन के करीब लोग वो हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एज ब्रैकेट में हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और उसके अंदर अब आप अपॉर्चुनिटीज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे? इतनी बड़ी जो 40 मिलियन की पॉपुलेशन है उसके लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ किस फील्ड में आएंगी, बस इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, इस वक्त हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं, ये बात आपने सुनी होगी कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, एक बैन अल-अक़वामी गांव बन गया है, कि अभी हम यहाँ बैठे हैं अमेरिका कॉल कर लें, स्काइप कर लें, एक दूसरे से बात कर लें। तो हम अपनी इस हायर एजुकेशन को या इस वो जो 40 मिलियन की पॉपुलेशन है कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल की, इसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम इसको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस या इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हासिल करें? नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, इसका नाम आपने सुना है? कितने लोग हैं जिन्होंने नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का नाम सुना है? कम है। ये आपको जानना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ये जिसने एप्पल दरियाफ्त किया, एप्पल जिसने दरियाफ्त नहीं किया, जिसने एप्पल बनाया है, क्या नाम है उसका जी? स्टीव जॉब। आप क्या समझते हैं कि स्टीव जॉब जो उसने जो भी कारनामा दुनिया में अंजाम दिया है, क्या वो मेहनत मजदूरी की बेस पे दिया जी? मेहनत मजदूरी की बेस पे नहीं दिया, उसने अपने ब्रेन की बेस पे किया, उसके पास जो नॉलेज था उसकी बेस पे उसने किया। और जिन्होंने गूगल लॉन्च किया है, दुनिया में पिछले 10 साल के अंदर जो मिलियनियर बिलियनियर लोग हुए हैं वो सारे के सारे इन वन वे और अदर वो सारे वो हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह से नॉलेज को यूज़ किया है और नॉलेज को कन्वर्ट किया है अपनी इकोनॉमिक गेन्स के अंदर। ये मुझे जो मेरे पास रिटर्न नहीं था, लेकिन मुझे शजर भाई ने फ़ोन करके ये हुक्म किया था कि आपने इस बात को एम्फिसाइज करना है कि हायर एजुकेशन की अहमियत क्या है। मेरी जितनी पहले की प्रीएम्बल था, पहले की गुफ्तगू थी वो, और जो आगे आएगी, उन सब का खुलासा ये है कि दुनिया अब एक वर्ल्ड इकोनॉमी है। अब ये ऐसी इकोनॉमी है जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, इल्म के ऊपर इसका इन्हिसार है। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं किसी स्पीच में सुना था कि हर 2 से 3 साल के बाद जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वर्ल्ड का वो अब डबल हो रहा है। आप अंदाज़ा करें कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज किस कदर तेज़ी से फैल रहा है। आप नॉलेज मैनेजमेंट एक खुद एक इंडिपेंडेंट साइंस के तौर पे इमर्ज हुई है। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसकी बेस है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की टर्म आप देखें तो आपको अरबों की शक्ल में लिटरेचर जो है वो मिलेगा। और दुनिया में अगर आप जाके थोड़ा स्टडी करें, एनालाइज करें कि इस वक्त दुनिया के अंदर जिन लोगों ने तरक्की की है, जिन मुल्कों ने तरक्की की है, जिन इंडिविजुअल्स ने, जिन कंपनियों ने तरक्की की है, जिन बिजनेस पार्टनर्स ने तरक्की की है, वो सारे के सारे वो हैं जो नॉलेज बेस्ड हैं, जिन्होंने अपने इल्म को कन्वर्ट किया है इकोनॉमी के अंदर। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी डिग्री कर रहे हैं, आप मेडिकल कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, रोबोटिक्स है, एरोनॉटिकल है, मेडिकल में जो भी आपका फील्ड है, आप इकोनॉमिस्ट हैं, इवन अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। आप देखें इकोनॉमिक्स जो है, जब हम स्टूडेंट थे तो इतना अहम सब्जेक्ट नहीं समझा जाता था, लेकिन अब इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत अहम सब्जेक्ट है, अब स्टैटिस्टिक्स बहुत अहम सब्जेक्ट है, यहाँ तक कि अब जो आर्ट्स हैं उसके सब्जेक्ट्स पर भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। तो इंग्लिश में कहते हैं देयर इज़ अ रूम एट द टॉप। आप जब भी किसी फील्ड के टॉप पे जाएंगे आपके लिए स्पेस है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस फील्ड में भी हैं, आप अपना वीएन इस तरह से डेवलप करें कि आप किस तरह से अपने नॉलेज को अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में, अपनी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में, अपनी मुआशी बहाली में, मुआशी आज़ादी में, मुआशी खुशहाली में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द पॉइंट आई वॉन्टेड टू मेक। और हायर एजुकेशन जो है, अब हम फिर उस पर वापस आते हैं कि हायर एजुकेशन में आपने बात की थी कि नए आइडियाज़ आते हैं, अब थोड़ी सी बात हम इस पर करते हैं। चंद चीज़ें मैंने ये की हैं कि हायर एजुकेशन आपको क्या देती है। जैसे इन्होंने कहा कि इनोवेशन देती है। अब इनोवेशन क्या चीज़ है? इनोवेशन जो है, आप किसी चीज़ के भी अंदर एक फ्रूटफुल, एक मीनिंगफुल मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो एक इनोवेशन है। अब ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे अलग अलग बेशुमार गुफ्तगू होनी चाहिए। इनोवेशन के ऊपर अलग एक सेमिनार होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप पे अलग सेमिनार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मेरे पास पूरा स्केड्यूल नहीं है इस ट्रेनिंग का, लेकिन डेफिनेटली हुए होंगे। तो जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर हैं तो एक तो ये है कि आपका थॉट प्रोसेस चलना चाहिए। आपको अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं उनकी बेस पे आपका जो ब्रेन है उसको ये सोचना चाहिए कि व्हाट इनोवेटिव आइडियाज़ यू कैन ब्रिंग इन योर फील्ड। आपकी अगर इंजीनियरिंग है उसमें आप क्या इनोवेशन कर सकते हैं, आपका मेडिकल है उसमें क्या इनोवेशन कर सकते हैं, आपकी कोई और फील्ड है, यहाँ तक कि अगर आप MBA हैं, बिजनेस है, तो बिजनेस के अंदर आप क्या इनोवेशन कर सकते हैं। देखिए हायर एजुकेशन कमीशन, हायर एजुकेशन की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि एक ज़माना था जो एग्रीकल्चर था वो सिंपल बेस, सिंपल मेहनत के ऊपर उसका इंहिसार था। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो वर्ल्ड बेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं क्या वो मेहनत पे बेस कर रही हैं या नॉलेज पे बेस कर रही हैं? नॉलेज पे बेस कर रही हैं, रिसर्च और तहकीक के ऊपर बेस कर रही हैं। नए नए जो है ना वो आइडियाज़ हैं, कोई ड्रिप इरीगेशन कर रहा है, कुछ स्प्रिंकल्स कर रहा है, किस तरह से आपने पानी बचाना है, किस तरह से कम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करनी है। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तभी आपको नॉलेज, हायर नॉलेज जो है, जितना कोई आदमी वेल अवेयर होगा, जितना कोई आदमी ज़्यादा इल्म रखता होगा, उतना ही वो अपना बिजनेस भी बेहतर कर सकता है। तो एक तो ये है कि हायर एजुकेशन के नतीजे में आप इनोवेशन जो है वो आपके अंदर आनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि एक टर्म है एंटरप्रेन्योरशिप, ये बड़ी आजकल मार्केट में इन है, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में इसके ऊपर बड़ा चर्चा है, बड़े सेमिनार्स हैं। कोई बताएगा एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? जी ये आपने जी प्लीज जी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑनरशिप यानी उसका मालिक होना, एक हवाले से आपकी बात सही है, बिल्कुल ठीक जी। बिजनेस, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जी, ये आप जाएं, आप EMTREPRENURSHIP एंटरप्रेन्योरशिप ये जाके सर्च करें आज और देखें कि क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और एक और चीज़ याद रखें कि आप जो है ना, जो भी चीज़ें मार्केट के अंदर हो, जो भी, जैसे ये एंटरप्रेन्योरशिप है, आपको किसी भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, तो आपको ये वेल अवेयर होना चाहिए चीज़ों से, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो भी तालीम है उसकी बेस पे, अब देखें आने वाला जो वक्त है उसमें भी जॉब बहुत ज़्यादा शायद ना हो, तो आप दो चीज़ें हैं, एक तो इनोवेटिव आइडिया से आप जॉब तलाश कर सकते हैं, अगर आपने कोई इनोवेटिव चीज़ की है कि आप जाके कह सकते हैं। मिसाल मैं आपको एक और चीज़ थोड़ी एम्फेसाइज करूं, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कि खुदारा या जो भी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, एमफिल के स्टूडेंट हैं, पीएचडी के स्टूडेंट हैं, आप जो भी रिसर्च के लिए टॉपिक चुने उसको जान छुड़ाने के लिए ना चुने और डिग्री करने के लिए ना चुने। अब वक्त की ज़रूरत ये आ गई है कि आप एक ऐसा रिसर्च का टॉपिक मुंतखब करें जिसका कोई फ़ायदा हो आपको, आपके इदारे को, और आप जब जॉब में जाएं इंटरव्यू में ये कह सकें कि जी मेरी मास्टर्स की डिग्री ये है, उसमें मैंने ये थीसिस किया है, या एमफिल में मैंने ये काम किया है, उसमें ये इनोवेटिव आइडिया जो है वो मैंने इंट्रोड्यूस किया है, या मैंने ये क्रिएट किया है। और बहुत से इंजीनियरिंग के, बहुत से रिसर्च के ऐसे इदारे हैं जो आपके इनोवेटिव आइडियाज़ पर आपको सेलेक्ट करते हैं। तो एक तो जॉब अपॉर्चुनिटी है इस हायर एजुकेशन के थ्रू कि अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप इनोवेटिव हैं, इफ़ यू थिंक डिफरेंटली, इफ़ यू क्रिएट डिफरेंटली, अगर आपने अपने थॉट प्रोसेस को एक्टिव किया है, तो आप जॉब भी दूसरों की निस्बत बेहतर ढूंढ सकते हैं। या दूसरी ऑप्शन जो है वो ये है कि आप अपनी डिग्री की बेस पे, आप अपने नॉलेज की बेस पे जो आपने हासिल किया है, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप जिसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, यानी इनोवेटिव जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उसके नतीजे में जो आप बिजनेस होगा उसको एंटरप्रेन्योरशिप सिंपल अल्फाज में हम कह लेते हैं। मिसाल के तौर कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है यहाँ पे? जी आप थोड़ा सा पानी मिले, आप खड़े होंगे। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, क्या मेजर है आपका? एग्रोनॉमी। अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप अपनी जो मास्टर्स है एग्रोनॉमी इसको किसी बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और एग्रीकल्चर के कौन से स्टूडेंट हैं? जी एनी अदर? जी आपका मेजर क्या है? मेजर क्या है आपका? आईटी। अच्छा आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक। चूंकि आप, और उसमें देखें आप कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। कंसल्टेंट इस तरह बन सकते हैं कि आप एक कंसल्टिंग फॉर्म बना सकते हैं जो आईटी बेस्ड हो और एग्रीकल्चरल कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती हो। तो मेरे ये सारे कहने का मकसद ये है कि अगर कोई इंजीनियर है वो ये सोच सकता है कि यार मैं सोलर एनर्जी पे ऐसा काम करूं जिससे मैं कल को अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करूं, और मैं मिसाल के तौर पर ये सोलर पैनल जो है अगर मार्केट में 10 रुपये का मिलता है और आपने अपने इनोवेटिव आइडिया से ये इसकी कॉस्ट रिड्यूस कर ली है और आपने 8 रुपये का कर लिया है, तो बजाय जॉब के आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का। आप अपने जब तालीम हासिल यूनिवर्सिटी की करें तो अपनी, अपना आंखें, अपने कान, अपना दिल दिमाग खुला रखें और वर्ल्ड को भी स्टडी करें और अपने ट्रेंड्स को भी स्टडी करें कि आप किस तरफ को जा सकते हैं। तो एक तो जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? तो जी रियाज मलिक की इन्होंने मिसाल ली। अब बहुत सी ऐसी मिसालें हो सकती हैं कि आप उसने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया या बेशुमार इस तरह की ऐसी चीज़ें हैं। अब हम ज़ाहिर है ये एक अलग मौजू है, इस पर नहीं जा सकते। तो कहने का मकसद ये है कि आपका जो भी जितना हायर एजुकेशन है वो आपको कॉन्ट्रीब्यूट करती है आपकी इकनॉमिक ग्रोथ में। जितनी आपकी एजुकेशन हायर होगी, बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं इमिग्रेशन में, बाहर के किसी मुल्क में सेटल होने के। अब दुनिया के अंदर जितनी इमिग्रेशन है, और हमारे बहुत से लोगों ने ली भी है, वो हायर एजुकेशन वाले लोगों को देते हैं, तो ये भी एक विंडो ओपन होती है। हायर एजुकेशन के नतीजे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इनोवेटिव हों, आप क्रिएटिव हों, आप जॉब करें, तभी आपको हायर एजुकेशन थ्रू योर इनोवेशन ये कंट्रीब्यूट करेगी। अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करें तब भी करेगी। अगर आप किसी मुल्क की इमिग्रेशन लेना चाहते हैं तब भी हायर एजुकेशन आपको कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें हायर एजुकेशन में तभी कंट्रीब्यूट करेंगी इफ़ यू हैव क्रिएटेड अ डिफरेंस। देखिए ना, 50 लोग डिग्री होल्डर्स हैं और उनकी एमएससी है, तो आप 5 लोगों को रखना है, क्यों रखें? अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, कोई आपके पास डिफरेंट एस्पेक्ट है, तो इस तरह से आप बेहतर जो है वो सेटलमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए, एक और चीज़ है हायर एजुकेशन के हवाले से, वो मैं चाहूँगा। बेसिकली ये मौजू एक ऐसा था, बड़ी तफसीली इसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी ताकि आपके स्लाइड्स शेयर करते, लेकिन मैं कंक्लूड करता हूँ इसको। हायर एजुकेशन में एक और चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस। आपने इस बात में भी कभी सोचा है कि आजकल कितना शोर है यूनिवर्सिटियों के अंदर हायर एजुकेशन में, कि जो आपकी हायर एजुकेशन है इसको आप कैसे लिंक कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के साथ? और एक कलफस सुना है किसी ने? और एक जी, और एक क्या होता है? ORIC। जितने भी यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट है सबको पता होना चाहिए कि और एक क्या है। नहीं, आपके दफ्तर, आपका ऑफिस है वहां पे, जो भी यूनिवर्सिटियां हैं, मिसाल के तौर पर यूईटी है यहाँ पे, या जरई यूनिवर्सिटी है, या जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनके अंदर अब हायर एजुकेशन कमीशन ने और एक बनाया है, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन, ORIC, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। उसका मकसद ये है कि आप जो भी डिग्री कर रहे हैं और जो भी रिसर्च कर रहे हैं, इसको किस तरह से आप प्राइवेट सेक्टर के साथ लिंक कर सकते हैं। आप कोशिश ये करें कि जो भी रिसर्च है या आपका जो भी मौजू है यूनिवर्सिटी का, उसको अपने इलाके में या अपने एरिया में स्टडी करें। मिसाल के तौर पर आप केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या आप केमिस्ट्री कर रहे हैं, या बायोकेमिस्ट्री कर रहे हैं, आप देखें कि आप प्राइवेट सेक्टर में किस चीज़ की डिमांड है। आप मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हैं? आप उस चीज़ की डिमांड को देखें और उसके मुताबिक रिसर्च करें, अपना थीसिस या अपनी इंटर्नशिप या अपनी रिपोर्ट उसके मुताबिक करें। उसके दो फायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये है कि आपका जो थीसिस है, जब भी किसी इंटरव्यू में आप जाएंगे, आप कहेंगे कि ये मैंने अप्लाइड रिसर्च की है, मैंने अप्लाइड इंटर्नशिप की है, यानी ऐसी इंटर्नशिप या ट्रेनिंग या रिसर्च या थीसिस किया है MSc, MPhil या PhD का, जिसकी कोई एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन जो है ये आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगी। और दूसरी क्या है कि आपने MSc MPhil कर लिया, आप इंडस्ट्री के पास जाते हैं, जी आप फलां जो है वो केमिकल बनाते हैं, मैंने इस चीज़ के अंदर स्पेशलाइज किया है, ये मेरा थीसिस है, मैं आपकी कंपनी के लिए ये काम कर सकता। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है जॉब की अटेनमेंट की, जॉब हासिल करने की, वो दूसरे कैंडिडेट्स की निस्बत ज़्यादा होगी। तो जो भी आप रिसर्च करते हैं उसको लिंक करें प्रैक्टिकल इश्यूज के साथ, वो इंडस्ट्री के हों, वो फार्मर के हों, वो बिजनेस कम्युनिटी के हों, वो कोई और सोसाइटी की नीड हो। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, वो फैक्टर्स हैं जो आपकी रिसर्च को, आपके थीसिस को फ्रूटफुल बना सकते हैं। इसमें मैं आखिरी चीज़ जो है ना जी, 3 मिनट रह गए मेरे पास, 4 मिनट, ये सारी हायर एजुकेशन की जो चीज़ें हैं ये मैंने आपसे शेयर की हैं। आखिरी 2-3 मिनट में मैं ब्रादरान आपको अपनी जो पिछली 20 साल एजुकेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी की और मेरी इस वक्त जो गवर्नमेंट का एक्सपोजर है सर्विस का, मैं चाहता हूँ कि चंद चीज़ें आप लिख लें कि आपके कैरियर के लिए जो बहुत अहम है। आप चूँकि हायर एजुकेशन में हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो स्किल्स आप डिवेल्प करें। अगर अल्लाह ताला ने मुझे कभी मौका दिया तो स्किल डिवेलपमेंट में मैं कभी आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। कौन कौन से स्किल्स अहम हैं आपके लिए अगले 5-7 साल में जब तक आप यूनिवर्सिटी में हैं? पहला मैंने आपसे जिक्र किया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स, ओरल एंड रिटन। आपको बहुत अच्छा लिखना आना चाहिए और बहुत अच्छा बोलना आना चाहिए। इसके लिए आप क्लास पढ़ें, इसके लिए आप अपने यूनिट के अंदर कोई आप एक्टिविटी जनरेट करें, इसके लिए आप जो भी नेट पे बेस करके आप कोई एक्सरसाइज करें, ये बहुत बढ़िया। आप जिस इंटरव्यू में जाएंगे आपको ये हेल्प करेगी, आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ये आपको हेल्प करेगी, आप किसी पॉलिसी मेकिंग इदारे में जाएंगे निगोशिएट करने में ये आपको हेल्प करेगी। तो ये बहुत ही अहम स्किल है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, मार्केटिंग में जाएंगे, कमर्शलाइजेशन में जाएंगे, सेल्स में जाएंगे, अपने बिजनेस में जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल जो है दे आर वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन योर कैरियर प्लानिंग। कि आप रिटन और ओरल अच्छा लिखना आना चाहिए, अच्छा बोलना आना चाहिए, नंबर वन। नंबर दो, आप किसी भी फील्ड में हो, आपको जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के वो आपको आने चाहिए। आपके इल्म में होना चाहिए कि एक अच्छा जो लीडर है उसके क्या ट्रेट्स होते हैं, जो एक अच्छा मैनेजर है उसकी क्या खूबियाँ होती हैं। ये दूसरी चीज़ है, मैं चाहूँगा कि आपके अंदर ये स्किल डिवेल्प हो, ये नॉलेज आपको हो। तीसरी चीज़ जो है वो जॉब के लिए और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए वो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। इंटरपर्सनल स्किल से मुराद ये है कि आप दूसरे लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, आप दूसरे इंसानों से कैसे बात करते हैं, कोई लड़ता है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई अच्छा है तो आप कैसे बिहेव करते हैं, आपने गुस्से में कैसे एक्ट करना है, खुशी में कैसे एक्ट करना है, अगर आपका कोई दुश्मन है उसके साथ आपने कैसे इंटरेक्ट करना है, प्रोफेशनल कोलीग्स हैं जॉब प्लेस पे जो कल्चर है वहाँ पर आपने कैसे रहना है। तो इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होते हैं हार्ड स्किल्स, एक होते हैं सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स होते हैं टेक्निकल, आपको जो आपकी नॉलेज है आपका फील्ड है उसके बारे में। सॉफ्ट स्किल्स यही होते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, आपके मैनेजेरियल स्किल्स कैसे हैं, इनको सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। वर्ल्ड के अंदर ये ट्रेंड है कि आप एक सर्टन लेवल तक तरक्की करते हैं हार्ड स्किल्स के ऊपर, लेकिन जब आप ऊपर वाले दर्जे पर जाते हैं तो फिर आपको सॉफ्ट स्किल्स जो है उनकी ज़रूरत होती है। तो इसलिए इंटरपर्सनल स्किल्स जो है इन पर इम्पॉर्टेंट। फिर एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टडी या ब्रॉड बेस्ड स्टडी। आपके पास बड़ा वक्त है, बड़ी उम्र है, बड़ी याददाश्त है, आप जितना हो सके वसी मुतालिया कीजिए। आप मज़हब का मुतालिया कीजिए, अपने मसलक का मुतालिया कीजिए, आप तारीख का मुतालिया कीजिए, आप साइंस का मुतालिया कीजिए, आप मुआशियात का मुतालिया कीजिए। जितनी आपकी जिस तरह इमारत जो है वो उसकी बुनियाद जितनी मजबूत होती है, आपका मुतालिया जितना वसी होगा आपकी पर्सनैलिटी उतनी ज़्यादा ग्रो होगी, आपकी एजुकेशन हायर एजुकेशन उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल होगी और वो हर जगह पर काम देगी आपको। और इससे अगली चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो IT स्किल्स हैं। देखें, आपको कंप्यूटर स्किल्स और जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं इनके स्किल्स आने चाहिए। अब ये एक पूरी मैनेजमेंट है कि आपने मोबाइल टेलीफोन को कैसे इस्तेमाल करना है, आपने आईपैड को कैसे इस्तेमाल करना है, आपने अपनी जो बुक होती है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, लैपटॉप कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर कौन से हैं, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल्स है जिससे आप अपडेटेड रहते हैं। तो IT रिलेटेड जो स्किल्स हैं ये आपके डिवेलप होने चाहिए। और एक और चीज़ यह है कि आप जिस फील्ड में भी हैं आप अपनी प्रोफेशनल नेटवर्किंग करें। अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग सोसाइटीज़ के मेंबर बनें, अगर आप डॉक्टर हैं अपनी प्रोफेशनल सोसाइटीज़ को ज्वाइन करें, एग्रीकल्चर हैं उस सोसाइटीज़ को, ताकि आपके प्रोफेशनल जो नेटवर्क्स हैं जो लिंकेजेस हैं, और अगर नेट बेस्ड आप कोई प्रोफेशनल क्लब्स ज्वाइन करते हैं, लिंक्डइन है या और इस तरह से, आपको पता हो कि आपके फील्ड में इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है और आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये एक ऐसी चीज़ है। फिर यह है कि आप जो जॉब अटेनिंग स्किल्स हैं वो आपके अंदर आने चाहिए कि जॉब हासिल करने के लिए कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत है। ये पूरी अलग अलग एक जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ अपनी ज़िंदगी का खुलासा, छोटे भाई समझ के और बेटा समझ के। ये जिस तरह होता है ना, एक जो वालद होता है वो उसको बड़ा दर्द होता है कि यार मैं बचे अपने को कोई ऐसा टीका लगाऊं कि आज ही इसके अंदर सारा इल्म आ जाए। तो मैं ये जब बस में आ रहा था तो मैं एक ही चीज़ सोच रहा था कि मुझे किन किन मसाइल का सामना था या किस चीज़ ने मुझे फ़ायदा दिया किसने नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी एक वो जो एक पेनफुल एक जर्नी है जिसके ज़रिए मैंने ये लर्न किया है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको देखें और सोचें कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट है। और आखिरी चीज़ जो है, वो टाइम ख़त्म हो गया है, आखिरी चीज़ जो मैं आपसे कहूँगा जिस पे इस वक्त ज़ोर देने की ज़रूरत है इन सारी चीज़ों पर जो भारी है, वो कैरेक्टर बिल्डिंग है। अगर कैरेक्टर बिल्डिंग है तो ये सारे स्किल्स आपको ज़िंदगी में फ़ायदा देंगे, और अगर कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है तो फिर इन ये सारी चीज़ें जो है ये आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होंगी। आयतुल्लाह अब्दुल हुसैन दस्तयाब ने बहुत खूबसूरत बात, उन्होंने सबसे पहली किताब जो लिखी थी 32 या 33 ईयर्स में, 32-33 साल की जवानी में, सलातुल खाशईन, खाशईन की नमाज, इसका उर्दू में भी तर्जमा मिलता है, उसमें उन्होंने कुछ फारसी के अशार लिखे और वो बड़े अहम हैं। जवानों को मुखातब करके कहते हैं कि अपने अंदर से, यानी तौबा के बारे में वो अशार है कि अपने अंदर से अभी इस्लाह कर लो, क्योंकि जब बुराई का दरख्त किसी जगह पर जड़ पकड़ लेता है, और यह हकीकत है कि उसको उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हमारे अंदर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इस्लाह करना मुश्किल होता जाता है। और जैसे जैसे आप अभी इस्लाह करेंगे, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करेंगे, वैसे ही आपके लिए आगे से आगे आसानी होगी। और ये मैं आपको बताऊं कि कैरेक्टर बिल्डिंग आपको हमेशा पे करती है, खा आप ईस्ट में हों खा आप वेस्ट में हों, अच्छे किरदार का हामिल इंसान जो है उसकी इदारे में भी मांग है, उसकी तालीम के अंदर भी मांग है, उसकी वेस्ट के अंदर भी मांग है। जो वेस्ट आपको इमिग्रेशन देता है, इतने चेक्स एंड बैलेंसेस है कि वो आपके कैरेक्टर को चेक करता है कि कोई क्रिमिनल तो नहीं है, किसी के अंदर जो है वो क्रिमिनल टेंडेंसी तो नहीं है, किसी ने कोई क्राइम तो नहीं किया। तो अच्छा कैरेक्टर ना सिर्फ दुनिया में पनपने के लिए बल्कि आखिरत में पर्सनैलिटी में, और ये जितने स्किल्स मैंने आपको बताए हैं, अगर बेहतर कैरेक्टर बिल्डिंग होगी तो इन सारे स्किल्स को चार चांद लगेंगे, ये पॉलिश होंगे, ये आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। लेकिन अगर कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है तो ये सारे प्रोफेशनल स्किल जो है वो किसी काम के नहीं हैं। और आखिर में मैं आपसे अपना जो गुफ्तगू का इख्तिताम है वो अल्लामा इकबाल के एक शेर से करना चाहता हूँ कि तू अपनी सरनविश्त अब अपने कलम से लिख, तू अपनी सरनविश्त, हम अपनी तकदीर लिखने पर खुद कादर हैं, अपनी जो सरनविश्त है तू अपनी सरनविश्त अब अपने कलम से लिख, खाली रखी है खामाए हक ने तेरी जबी, कि जो खालिक है उसने तेरी पेशानी खाली रखी है, आपके पास पोटेंशियल है, उम्र है, सलाहितें हैं, आप जो चाहे लिख सकते हैं अपनी तकदीर के बारे में। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और इस कौम के हर बच्चे को बेहतर से बेहतर किरदार साजी की तौफीक अता फरमाए। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, या इससे बाद का जो सेशन है उसमें पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन अगर हो तो
हाँ जी, कोई सवाल नहीं है, इसके मतलब किसी को कोई समझ नहीं आई। एक किताब है उसको आप नेट पे जाके सर्च कीजिएगा, आस्क एंड यू विल सक्सीड, कि आप पूछें ताकि आप कामयाब हो। जी अब माइक में थोड़ा सा फैसिलिटेट कर, चले वो उधर ले गए माइक को। अब जब तक आपका टाइम परमिट करे तब तक आप मुझे राइटर का नाम इस वक्त याद नहीं है, मेरे पास किताब घर पे है तो, लेकिन इसको आपको नेट पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। आस्क एंड यू विल सक्सीड, ये ऐसे ही मैं, मुझे एक आदत है कि जब कोई चीज़ जहन में आ जाए तो मैं शेयर करता हूँ इन्फॉर्मेशन। जी प्लीज़। जी जी
इसलिए पूरी तरह इन भी सब्रेट साल एक होता और सही करता है सर।
सही में उसको डिजाइनिंग आती है, वो जाके मैकेनिकल इंजीनियर का स्किल करते हैं, तो गलत हो मतलब नदी को एक घटने में चेंज करने के लिए क्या चीज़ जरूरी
है। हाँ ये बात बड़ी अहम है। देखें पहली चीज़ तो ये है कि हमारी सर्वाइवल इस चीज़ में होती है कि हम आगे की तरफ देखें। लीडरशिप स्किल्स ये हैं। वहाँ पर मैं एक चीज़ हम एक केस स्टडी करने गए थे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क कैसे बनाए जाते हैं। 90 से लेके तकरीबन 20-24 साल के अंदर जो चाइना है उसने अपने नॉलेज की बेस पे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ दी है। अब ये बहुत तफसीली गुफ्तगू है। मैं आपसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि कितने फीसद लोग हैं जिन्होंने नॉलेज की बेस पे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हासिल की है। दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि कॉमों ने अब जो ट्रेंड है, आप जानते हैं कि ये जो नोकिया है किस मुल्क से है? जी फिनलैंड। और नोकिया की जो टोटल सेल है उससे जो इनकम होती है वो पता कितनी है? पाकिस्तान के बजट से ज्यादा। तो सिर्फ नोकिया बनाने वाली जो कंपनी है उसका बजट पाकिस्तान के टोटल बजट से ज्यादा है। तो देखें इसमें मैं एक चीज आप याद रखें कि जब बात की जाती है तो वो 100% एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आप इस हॉल में 300 स्टूडेंट बैठे हैं तो हो सकता है कि मेरी बात को 100 बंदे या 100 क्या, मैं तो अपने लिए समझता हूँ कि अगर एक आदमी भी उसके ऊपर अमल करके उसको कन्वर्ट करता है तो वो एक मेरे पार्ट पे सक्सेस है। अभी तक बहुत कम परसेंटेज है। मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ना मेरे जहन में कोई ऐसा डाटा है, रिपोर्ट है कि कितने परसेंट लोगों ने नॉलेज को इकोनॉमी में कन्वर्ट किया है। लेकिन एक महीना पहले मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। आपने एहसन इकबाल का नाम सुना है? जी बेटा, आप जो जिन्होंने क्वेश्चन किया था, आप मेरी बात सुन रहे हैं? ओके। ये एक महीना पहले, शायद महीने से भी कम हो, ये हम पंजाब यूनिवर्सिटी में एक किसी वर्कशॉप कोई कॉन्फ्रेंस मैंने करवाई तो वहाँ पर एहसन इकबाल साहब को एज ए चीफ गेस्ट हमने इन्वाइट किया। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की जो आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ना तो फ्यूडल हूँ और ना मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, और ये बात भी फैक्ट है, मैं ना फ्यूडल हूँ ना इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मुझे जो आज तक जो भी गेन्स हुए हैं वो सारे के सारे मेरे नॉलेज की वजह से हुए हैं। कैसे? उन्होंने इंजीनियरिंग की थी लाहौर से और उसके बाद यूएसए से उन्होंने एमबीए किया। तो उन्होंने एक बात कही कि जी मेरा जो भी पॉलिटिकल गेन है या इकोनॉमिक गेन है इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो नॉलेज का है। तो आप ये देखें कि उन्होंने नॉलेज को कन्वर्ट किया है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी और अपनी पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए भी। ये मैंने जस्ट आपको एक मिसाल दी है जिनसे मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ है। तो आप, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप ज़रा डिफरेंटली इनोवेटिव अंदाज में जब सोचेंगे तो आप अपने नॉलेज को अल्टीमेटली अपनी वो जॉब की शक्ल में भी हो सकती है। देखें ना, जॉब अगर आप प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, एक आदमी को जो है ना वो 1 लाख का पैकेज मिल रहा है और वही उसी फील्ड का एक और आदमी है जिसको 10 लाख का पैकेज मिल रहा है। तो ये डिफरेंस यहाँ क्रिएट होगा कि आप अपने नॉलेज को किस तरह से इनोवेटिव बनाते हैं। जी
सर, आप पाकिस्तान साइंस एकेडमी में, तो वहाँ पे हमारे कुछ सीनियर ने, हमारे कुछ सीनियर प्रोजेक्ट भी थे, उनको फंडिंग भी हुई थी। तो मैं ये पूछना चाहता था कि आप मतलब हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं वहाँ पर, अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसकी फंडिंग क्या होगी?
तो मेरे इदारे की जो हेल्प है वो बेसिकली हम फैकल्टी मेंबर्स को या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको प्रोजेक्ट फंड करते हैं, क्योंकि ये एक प्री रिक्विजिट है उसके लिए। लेकिन उसमें ये हो सकता है कि आप डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मोटिवेट भी आप कर सकते हैं अपने सुपरवाइज़र को या अपने टीचर को कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है और आप किसी अच्छे आइडिया के ऊपर प्रोजेक्ट बना सकते हैं या अपने टीचर को हेल्प कर सकते हैं और आप MSc, MPhil या PhD के स्टूडेंट हैं तो आप उन प्रोजेक्ट्स के अंदर रिसर्च एसोसिएट हो सकते हैं। और रिसर्च एसोसिएट होने का मतलब यह है कि आपको 20,000 या 25,000 स्टाइपेंड भी उसमें मिलेगा और उसमें जो प्रोजेक्ट है वो आपके सीवी में एज ए क्रीडेंशियल भी वो आपकी स्ट्रेंथ होगी। लेकिन हमारा जो मेजर जो प्रोग्राम्स हैं वो हैं जो फैकल्टी मेंबर्स हैं। इसके अलावा साइंस फाउंडेशन का एक छोटा सा प्रोग्राम है इन्वेंशन इनोवेशन प्रोग्राम, उसमें अगर किसी इंजीनियर का किसी और किसी भी फील्ड से एग्रीकल्चरिस्ट का कोई इनोवेटिव आइडिया हो तो वो बड़ी स्मॉल अमाउंट है जो हम फंड करते हैं, 50,000 हो सकती है या 100,000 तक जो है ना वो हो सकती है 1,00,000 तक, वो आप अप्लाई कर सकते हैं कि जी मैंने ये एक इनोवेटिव चीज़ डिज़ाइन की है, डिवेल्प की है, कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं सोचने का, तो उस सिलसिले में आप एक शॉर्ट प्रपोजल जो है वो दे सकते हैं।
कोई एक आखिरी क्वेश्चन हो गए, आखिरी क्वेश्चन
जी लिंक, अगर आप पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाएं तो www.psf.gov.pk ये वेबसाइट आप देख सकते हैं, और या आप मुझे डायरेक्ट भी जो है ना वो अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं थ्रू योर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आपके जो भी डीन हैं या डायरेक्टर हैं उनके थ्रू। जी
अगर वो खसूसियात अपने अंदर पैदा कर ले तो वो अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं या फिर अच्छा बिजनेसमैन है जैसा भी है वो बन सकते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के 5-10 साल बाद जाके कहीं कोई अच्छी जॉब मिलती है, वो कौन सी है खसूसियात अगर वो स्टूडेंट उन पर तवज्जो कर ले, उन पर फोकस कर ले, जिस तरह की आपने कुछ एबिलिटीज के बारे में बताया है, अगर वो किसी तरह की दूसरी एबिलिटीज की तरह तवज्जो कर ले तो वो एक अच्छा जॉब सीकर बन सकता है बहुत जल्दी।
बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसी पे हम एंड करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में जो मेजर मार्केट शेयर है वो उसके अंदर एक रिटर्न है जॉब रेडीनेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जॉब के लिए कितना रेडी हैं, और वो मैंने आपको जो स्किल्स लिखवाए हैं ये सारे के सारे स्किल्स आप अपनी डिग्री हासिल करने से के साथ साथ अगर इन स्किल्स को डिवेलप नहीं करेंगे, देखिए ना कम्युनिकेशन स्किल ये ओवर द माइंड डिवेलप नहीं होगा, ओवर द माइंड डेवलप नहीं होगा, इसके लिए आपको चंद साल मुसलसल कोशिश करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आपका टाइम फ्रेम, आपका पीरियड, आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन टेन्योर है वो बहुत क्रूशियल है, क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस कर रहा है आपका फ्यूचर। जो मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो, जॉब अटेंडिंग स्किल्स हो, फिर ये भी होना चाहिए कि आप ये पूरी एक अलग से वर्कशॉप है कि जॉब के लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है। बस मैं ये चाहूंगा कि आप जैसे दो शख्स जिस जॉब के लिए जाए उसके लिए एक मॉक इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट है, MOCK मॉक इंटरव्यू। ऐसी बाहर के मुल्क में मुझे ये आइडिया है कि ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ, ये हो सकता है कि जो सीनियर प्रावधान हैं उनकी एक कमेटी हो, उनका एक बोर्ड हो, हमारे जो बच्चे किसी इंटरव्यू के लिए जाना चाहें उनका वो मॉक इंटरव्यू करें, और बाहर के मुल्क में $50-$100 फीस लेते हैं कि आप किसी को जाते हैं कि ये जॉब है, ये ऐड है, आप ऐड के मुताबिक उसमें लिखे होंगे स्किल्स के लिए इतना एक्सपीरियंस चाहिए, ये इसके साथ होना चाहिए, आईटी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तो वो बंदा आपको इवैल्यूएट करता है, आपको इंटरव्यू करता है और जज करता है कि आपके स्किल्स और जॉब के स्किल्स कितने मैच कर रहे हैं। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कुछ स्किल्स आपको लिखवाए हैं, लेकिन ये अलग से किसी वक्त बाकी जो प्रावधान है वो इस पर कह सकते हैं, ये ओवर द नाइट स्किल्स नहीं डेवलप होने वाले। जो भी मैंने आपको ये चीज़ें शेयर की हैं इस 2-4 साल की जो आपकी जो एजुकेशन है इसमें आप ट्राई टू डेवलप है, और आई होप कि फिर आप जब इस चीज़ के ऊपर आपकी लगन पैदा होगी तो अल्टीमेटली आपको रिसोर्सेज भी मुहैया होंगे और आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपको हेल्प।